जुमे का दिन तारीख 22 जुलाई नमस्कार भारत फैसल मोहम्मद अली से। दलितों पर देश भर में हो रहे लगातार हमले संसद में दिन भर गूंजते रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल देर शाम दिया बयान।
जो भी गुजरात की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश में नहीं होनी चाहिए।
बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अपशब्द पर बीएसपी की लखनऊ में रैली। कश्मीर से एक और आवाज, सुनेंगे एक युवती की डायरी। और फ्रांस के नीस हमले में जांच जारी, सरकारी वकील ने कहा हमलावर को मिली थी मदद।
Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont en fait cessé d'avancer.
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दलितों के मुद्दे पर दिल्ली, लखनऊ और गुजरात में सरगर्मी बनी हुई है। गुजरात में दलितों की पिटाई के विरोध में कल संसद में काफी हंगामा हुआ। संसद में विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात का दौरा करेंगे और ऊना में दलितों से मिलेंगे। वहीं लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती के लिए अपशब्द कहने वाले भाजपा से निकाले गए अध्यक्ष दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। केरल पुलिस ने विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाई की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम अर्शद कुरैशी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुरैशी के खिलाफ कोच्चि में आपराधिक साजिश, समुदायों के बीच द्वेष फैलाने और गैरकानूनी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोच्चि पुलिस ने कुरैशी को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी शाखा की मदद से नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और उसे ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद कुरैशी को केरल पुलिस की टीम कोच्चि के लिए रवाना हो गई है। ब्राजील की संघीय पुलिस ने अगले महीने से शुरू हो रहे रियो ओलंपिक्स में संभावित चरमपंथी हमले की तैयारी कर रहे 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ब्राजील के नागरिक हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर डाले गए संदेशों से पहचाना गया है। ब्रासिलिया में न्याय मंत्री अलेक्जेंडर डी मोरिस ने ज्यादा जानकारी दी।
Mas a partir desse juramento, o batismo na verdade é um juramento ao Estado Islâmico.
कुछ खास तैयारियां की गई थी और इस्लामिक स्टेट के साथ समर्थन भी जताया गया था। यहां तक कि इनके ग्रुप में आदेश दिया गया था कि सभी सदस्य मार्शल आर्ट्स, हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण लें। किस मकसद से ये सब किया जाए ये साफ नहीं किया गया था। ये थे न्याय मंत्री अलेक्जेंडर डे मोरिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ ने तुर्की में आपातकाल लागू करने के फैसले पर गहरी चिंता जाहिर की है। पिछले हफ्ते नाकाम तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति अर्दोगान के 3 महीने के लिए आपातकाल लागू करने के प्रस्ताव को संसद ने भी मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ में विदेशी मामलों की प्रमुख फ्रेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि तुर्की की सरकार की ताकत बेशुमार इजाफा हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने एर्दोगान सरकार से कानून, मानवाधिकार और आज़ादी के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। अब तक नाकाम तख्तापलट में शामिल होने के शक में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भारत में कल एक बार फिर दलितों पर हमले का मुद्दा संसद और संसद के बाहर छाया रहा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक बार फिर अपने खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर बोली और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुद से अपने नेता के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए था। बीजेपी के एक नेता ने मायावती के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया था जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। उधर दलितों पर गुजरात में हुए अत्याचार पर दलित समाज गुस्से में है। कल देर रात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में गुजरात की घटना की निंदा की।
जो भी गुजरात की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश में नहीं होनी चाहिए। मैं ही ऐसा सोचता हूं या नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे और देश का कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को जस्टिफाई नहीं करेगा। और मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं देश की मानव समाज की मानवता के लिए यह कलंक है।
ये थे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। उधर बहुजन समाज पार्टी ने कल भाजपा से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन बसपा उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दूसरी तरफ अभद्र भाषा के खिलाफ निकाली गई रैली में जमकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और कई राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज में कल सुबह से ही अपनी नेता के समर्थन में इसी आक्रामक अंदाज में थे। ये लोग भाजपा से निकाले गए प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की मायावती के लिए की गई अभद्र भाषा से नाराज थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे नारे लगे जिससे लगा कि ये नेता ये भी भूल गए कि वो किसी की अभद्र भाषा का विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। नारेबाजी में इस्तेमाल की गई इस भाषा की चारों ओर निंदा हो रही है, खासकर राजनीतिक दलों में। भाजपा ने तो नारेबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा का कहना है कि बसपा को इस मामले में राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए।
लोकतंत्र में कहीं पर भी इस तरह के अपशब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी तरफ से जिस तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, तुरंत उनको उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया, उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन और जो जिस तरह की शब्दावली उपयोग की गई है कि दयाशंकर की जबान को जो काट के लाएगा उसको 50 लाख दिए जाएंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। और तो उसके बाद अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
नारेबाजी में जब इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था उस समय बसपा के तमाम बड़े नेता विधायक वहां मौजूद थे। ये सब पहले से तय था या फिर अचानक कुछ लोगों ने जोश में ऐसा कहा, इस पर बात करने के लिए बसपा का कोई नेता तैयार नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि प्रतिक्रिया देने का अधिकार सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को है और सिद्दीकी से तमाम कोशिशों के बावजूद बात नहीं हो सकी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
जो शिष्टाचार है उसमें चाहते हैं कि लोगों का सौहार्द रहना चाहिए। राजनीति में तो अलग अलग दल है, अलग अलग विचार है, जनता भी सब देखती है और जो भी कानून की जद में आएगा उसके कानून अपना काम करेगा फिर उस पर।
इस बीच दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी के लिए कल कई जगह उनकी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिले। उनके खिलाफ बसपा नेताओं ने SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। जानकारों का कहना है कि इस घटना ने बसपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया था, लेकिन गुरुवार को जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है उससे अब वो खुद बैकफुट पर आ गई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
कहा जाता है कि जबान हो लेकिन जबान पर लगाम रखना भी शायद उतना ही जरूरी है। नेताओं को सीखने की जरूरत है, साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी सिखाने की। दलितों पर ही गुजरात में हुए अत्याचार के मामले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल ऊना पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। हमारे सहयोगी विनीत खरे इन दिनों गुजरात में ही हैं। वे ऊना के मोटा समरियाला गांव पहुंचे। ये वही गांव है जहां के 4 दलित लड़कों की बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। विनीत ने परिवार के लोगों से और दूसरे लोगों से बातचीत की।
हम इस वक्त हैं ऊना के गांव मोटा समरियाला में, जो 4 लड़कों पर जो हमला हुआ था हम उन्हीं के गांव में हैं। ये है विक्टिम के भतीजे सरवाया जीतू भाई, और साथ में हमारे साथ हैं विशाल परमार जो कि मुंबई से आए हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और उनके साथ हैं नितिन परमार। सबसे पहले सरवाया ये बताएं कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी तबीयत कैसी है और इस गांव पर क्या असर हुआ है जो घटना हुई है?
वो चारों की तबीयत अभी अच्छी है पर वो चल फिर नहीं सकती, इसे लेटे रहते हैं, हमें उसे उठाने के लिए टॉयलेट वगैरह ले जाना पड़ता है। और उनको जैसे पीटा है, बुरी तरह से उन पे हावी हो गया, उनके माइंड में बुरी तरह से है।
आपकी मुलाकात हुई है उनको?
हाँ,
उनसे
उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। वो रात को अगर सोते हैं वो ठीक से सो भी नहीं पाते।
आपके ताऊ जो हैं वो काओ स्किन का काम करते थे, ये कितने कब से चल रहा है?
25 सालों से करते हैं ये मेरे ताऊ, और ये हमारा पेशा बरसों से वंश परंपरागत चल रहा धंधा है।
ये जो घटना हुई है इससे दलित समाज में क्या मैसेज गया है?
मैं ये कहना चाहता हूँ उस बारे में कि ये हमारे साथ हुआ है आज, कल उनके साथ भी हो सकता है और आगे भी ये हो चुका है, इसीलिए उन सब में जोश आ गया कि बार बार क्यों हम सहन करें ये सब, ये अत्याचार बार बार ही क्यों हमारे पर है।
आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सरप्राइज हुए जिस तरह का रिएक्शन हुआ है, या आपको लगता था कि इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था?
हाँ, मैं ये जब मैंने वीडियोस देखा तब मैं खुद दंग रह गया कि इस तरह की मार, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते हैं, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ यहाँ से इंजीनियरिंग में, खुद अकेला ही हूँ, तो मैं शॉक हो गया कि जो पढ़ते नहीं ऐसे मजदूरी करते हैं कैसे करते होंगे।
अगर आप यहाँ पे रात में आए रहते और रात में आपको पूछा रहता कि ये जैसा भाई के घर पे जाना है, तो आपको ऐसा बोलेगा कि हरिजन के घर पे? इतनी तरह का गुजरात के अंदर जाति भेद है, ये मोदी का गुजरात नहीं है, ये किसी का गुजरात नहीं है, ये दलितों पे हुआ अत्याचारों का गुजरात।
जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, आप दर्शन हो रहे हैं। नितिन परमार, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली है जो दलित समाज है, गुजरात की दलित समाज, उसको तो पहले से गांव के अंदर रहने का अधिकार ही नहीं, उसको गांव के बाहर रखा जाता है। क्यों? एक तो बुनकर का काम करते थे, वो काम हमसे छीन लिया गया, हमको ये चमड़े का काम दे दिया गया, और वो चमड़े का जो काम दे दिया गया उसी को बेस बना के उन लोगों ने अनटचेबिलिटी स्टार्ट कर दी। धीरे 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 लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती जा रही है कि ये जो शेड्यूल कास्ट वाले, वो लोग हमेशा जब जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं, तभी से उनके अंदर इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब पैदा हो जाता है, और जो अपर कास्ट वाले, उन लोगों के अंदर पहले से ही सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाते हैं कि हम लोग तो आए हैं, हम लोग पैदा ही हुए दादागिरी करने के लिए।
और आज की तारीख,
लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा? इतना जो एजिटेशन हुआ है,
असर होगा
इनकेस अगर मीडिया उनको पूरी ईमानदारी से सपोर्ट करे। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज से ये सारा काम बंद कर दिया जाए, सारा डोर बोर उठाना सब कुछ बंद कर दो, जो भी
जो सड़ते डोर
सड़ने दो, कोई बीमार पड़ता है पड़ने दो, ये सब खत्म कर दो, वो जब इन लोगों का आके तभी खुलेगा। इस वक्त सीआईडी की जो एक टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, पुलिस का भी प्रेजेंस है।
मोटा समरियाला गांव पहुंची बीबीसी की टीम, बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये बातचीत लोगों के साथ। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी से बात की और पूछा कि जिस तरह से दलितों के खिलाफ बार बार इस तरह के हमले के मामले सामने आ रहे हैं और दूसरे इसी तरह के मामले, ऐसे में इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकाला जाना चाहिए?
जैसे ये खबर आई कि ऊना में दलितों की पिटाई की गई है और कथित तौर पर शिव सैनिकों ने ये पिटाई की है, उसके बाद जिस तरह से गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उसका उदाहरण कम मिलता है। तो ये तो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को इसका एक तरह से श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने इसमें कोई खामोशी नहीं बरती या इसको टालने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके कारण जो हैं वो राजनीतिक हैं। यहाँ संसद में भी, लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये पता चला तो काफ़ी दुखी और इस खबर से काफ़ी त्रस्त भी थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब दलितों पर अत्याचार होता है तब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सक्रिय होती है, लेकिन इसी तरह का अत्याचार जब दूसरे जातियों पर होता है या अल्पसंख्यकों पर होता है तो उस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं नज़र आती है। सुशीला जी, इसके दो कारण हैं। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चुनौती, बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को एकजुट करने की बात करता है, लेकिन जब हिंदू समाज में ही दरारें नज़र आती हैं तो उसका वो आखिरी जो सपना है जिसके ज़रिए वो भारत में भगवा झंडा फहराना या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का जो उनका जो आखिरी सपना है, उसमें कहीं ना कहीं उनको एक चोट पहुंचती है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है कि वो दलितों को अपने साथ कैसे बरकरार रखे, साथ ही अपना जो एजेंडा है उस पर भी कायम हो। यानी जो इसलिए सीधे जिम्मेदारी उन पर आती है कि एक तो गो रक्षा की बात जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद वगैरह करते हैं, उससे समाज में मैसेज ये जाता है या उनके आनुषांगिक संगठनों में मैसेज ये जाता है कि जहां पर भी गायों को या गौवंश को लेकर के कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो तो वहां अपने आप कार्यकर्ताओं को भिजवा दीजिए और मारपीट कीजिए। सवाल ये है कि जब ये दलितों पर बात आती है तब काफ़ी चेत जाते हैं ये संगठन, मुसलमानों पर जब बात आती है तो नहीं चेतावनी होती। ये चैलेंज जो है ये संघ के सामने है और बीजेपी के सामने।
जी, दलितों की बात जब आती है तो काफ़ी चेत जाती है बीजेपी। यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बसपा सुप्रीमो है उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का असर पड़ेगा इन चुनावों पर?
मायावती पर भी जो अभद्र टिप्पणी दयाशंकर सिंह ने की थी उत्तर प्रदेश में, उनको पहले पार्टी के पदों से हटाया गया, फिर पार्टी से निलंबित किया गया और निकाल दिया गया। अब उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किए हैं और पुलिस रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन दयाशंकर सिंह का उदाहरण अकेला उदाहरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता वीके सिंह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी फरीदाबाद की जो घटना हुई थी आपको याद होगा, उसमें दलित बच्चों की तुलना करते हुए उन्होंने कुत्ते के पिल्लों की बात कही कि अगर वो भी मर जाते हैं तो इस तरह के उदाहरण जब आते हैं तब ये लगता है कि कई बार बेसाख्ता कई चीज़ें कह दी जाती हैं, उनके राजनीतिक जो प्रतिफलन होता है उस पर शायद लोगों की नज़र नहीं जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में उनके सामने अब चुनौती ये होगी कि वो मायावती, जो एक तरह से बहुत कमज़ोर अपने आप को एक तरह से महसूस करने लगी थी क्योंकि उनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे, उनको इससे बहुत ताकत मिलेगी क्योंकि दलित समाज में एक मैसेज ये चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलित समाज के लिए एक तरह से संवेदनहीनता की स्थिति में है। तो अगर ये चुनाव प्रचार के दौरान मायावती और बहुजन समाज पार्टी इस मैसेज को फैलाने में कामयाब हो जाती हैं तो बहुत बड़ा दलितों का एक तबका वापस जम जाएगा बहुजन समाज पार्टी और मायावती के पक्ष में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर होगी।
दलितों पर हो रहे हमलों का क्या राजनीतिक असर होगा, बता रहे थे बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख कश्मीर का। भारत प्रशासित कश्मीर के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी है और अलगाववादियों ने 25 जुलाई तक बंद की कॉल को बढ़ा दिया है। अलगाववादियों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें जुलूस की अनुमति नहीं दी गई तो राज्य में स्थिति बिगड़ सकती है। हिजबुल मुजाहिदीन के चरमपंथी बुरहान वानी की झड़प में मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद हुई हिंसा में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो गई है, कई सौ घायल हैं। घायलों में पुलिस वाले भी शामिल हैं, सुरक्षा कर्मी भी। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या CRPF के DIG के शर्मा से बात की और पूछा कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए।
पाकिस्तानी सरकार है और वहाँ की जो आतंकवादी गुट हैं, उन्होंने यहाँ एक नेटवर्क तैयार किया है जिसके जरिए वो यहाँ के जो यूथ हैं उनको बरगलाकर और कुछ को धमकाकर वो इस तरह की कार्रवाई में सफल हो रहे हैं।
इसी कारण आपको लगता है कि ये नया जो दौर शुरू हुआ वायलेंस का, या और भी कारण?
मुख्यतः तो यही कारण है।
कुछ लोग ये कह रहे हैं दिल्ली में कि ऐसा लगता है कि कई सतह पे फेलियर रहा है प्रशासन का।
देखिए, जहाँ तक CRPF का सवाल है, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी जो इंसर्जेंसी है उसके लिए हैं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ कैसा फेलियर रहा।
चलिए CRPF के ही बारे में बात करते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि एक्सेस यूज ऑफ फोर्स हुआ है CRPF की तरफ से, उसके बारे में क्या कहें?
इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैक्सिमम रेस्ट्रेंट रखा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लगभग 900 सुरक्षा बल घायल हुए हैं, तो जिसमें से कुछ लोगों को तो हमको दिल्ली भी शिफ्ट करना पड़ा है आंख वगैरह के लिए। तो आपने देखा संगम ब्रिज पर क्या हुआ, एक सुरक्षा सैनिक को जो था उसको गाड़ी के साथ नदी में डाल दिया गया जिससे उसकी डेथ हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह थी। कई जगह ऐसा था कि जहां सुरक्षा बल के कार्मिक इंजर्ड हो गए ग्रेनेड वगैरह से, उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए रास्ता रोका गया।
जो 9 तारीख को क्लैशेस हुए उसमें जो लोग जख्मी हुए हैं, तो कई लोगों का मानना है कि इसमें जो पैलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है जिसके कारण जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उस पर घायल ज़्यादा हुए हैं लोग, और आंखें लोगों की गई हैं।
देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कुछ नौजवान जो कि इस तरह के प्रदर्शन में शामिल थे उनको चोट लगी है और आंखों को जो नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें जो उस समय स्थिति होती है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह गोली चलाते हैं और उस समय पत्थर लेने के लिए या कोई झुकता है तो वो भी एक कारण होता है।
जैसे कि आप बहुत जख्मियों से मैंने बातें की तो उसमें एक 9 साल का बच्चा भी था, कुछ एक और बच्ची भी थी छोटी सी, तो वो उसमें शामिल नहीं थे, ऐसे लोग भी घायल हुए हैं।
देखिए कि पिछले 30 साल से सक्रिय रूप से यहाँ CRPF है, लेकिन
कुछ लोग इसको जानबूझकर इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं जहां की बेगुनाह लोगों को आगे करते हैं और उसके बाद उस चीज को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं।
छर्रों का जो इस्तेमाल किया गया है, पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसकी रीथिंकिंग होनी चाहिए क्योंकि इससे इंजरीज भी हुई हैं, डेथ्स भी हुई हैं, आंखों की रोशनी भी गई है लोगों की।
बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
जो भी हुआ वो आप भी कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, दुनिया भी कह रही ठीक नहीं हुआ, लोग भी कह रहे ठीक नहीं हुआ, तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी कोई इसमें कि इससे कुछ सीखे, ऐसा कुछ हो रहा है?
ये एक प्रोसेस है सर्टेनली। हम लोग इससे, जैसा कि आपने पहले पूछा था कि क्या हम क्या पैलेट गन के बारे में विचार करेंगे, हर एक जो घटना होती है उससे हम सीखते हैं और बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं।
सीआरपीएफ के डीआईजी के शर्मा, उनसे बात कर रहे थे जुबैर अहमद। डीआईजी शर्मा का ये कहना था कि 900 सुरक्षा बल के लोग घायल हुए हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब ग्रेनेड उनको लग गया है तो लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने से भी रोकने की कोशिश की है। अब बात कश्मीर की ही। कश्मीर में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में बीबीसी हिंदी बात कर रहा है कश्मीरी युवाओं और युवतियों से और जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या सोचते हैं। आज इस कड़ी में सुनिए सनम मट्टू को, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं।
इट्स लाइक अ केज। आप देखिए बाहर से रिस्ट्रिक्शन है, पुलिस है, आर्मी है बाहर। आई एम नॉट एट माई प्लेस, मैं बुआ के घर पे हूँ। सो मैं अपने घर पे अगर होती, आई एम नॉट एबल टू कॉल माई पेरेंट्स। आप देखिए मीन्स अपने घर पे, मीन्स मैं घर पे नहीं हूँ, इधर पे आई गॉट स्टक, मीन्स आई कॉन्ट मूव देयर। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है एंड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, तो मैं जा नहीं सकती हूँ वहाँ पे, और अभी तो कॉल भी नहीं कर सकता है। और आप देखिए जो ही हम बाहर जाते तो नज़र पड़ती है, पुलिस वाले हैं, देख रहे हैं, गन लेके हैं, मतलब इतना डर लगता है इंसान को। हम रह कर रहे हैं, इज़ इट आर लैंड कि इनका लैंड, और ऐसे देख रहे होता है एज इफ दे आर अबाउट टू शूट। सो यहाँ पे तो रोज़ का ऐसा ही है, इट्स नॉट जस्ट टुडे। फॉर बुरहान, फॉर अस ही इज़ अ हीरो, अ रियल हीरो। हाँ, अगर हमें भी नहीं, हमें पता है इस करने से कुछ नहीं होगा। अब हुआ क्या, पीसफुल प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे लेफ्ट। अगर मुझ तक होता मैं भी गन उठाती, मैं भी जाती, बट आई डोंट नो द वे आउट। उनके लिए सरप्राइज होगा, हमारे लिए यहाँ पे सरप्राइज नहीं है। हमारे साथ रोज़ ऐसा ही होता है यहाँ पे। 2008 में देखिए आप, मैं तो ज़्यादा पुराना, मतलब 90s की बात नहीं करूँगी, 2000 रीसेंट का जो है, 2008 है, 2010 है, तब भी इतनी सारी किलिंग्स हो गई। फिर किसी ने बात क्यों नहीं की? पीस आ गया, फिर वो पीस, मतलब वो था नहीं, उनके लिए पीस था यहाँ पे, तो तब भी वैसी सिचुएशन थी, बट उन लोगों ने आगे बात नहीं की। वो किसका वेट कर रहे हैं? अब उनको और कितने मारने हैं? आप देखिए वो तो शूट करते हैं, ऐसे ही लोग आते हैं आगे और वो शूट करते हैं, बिकॉज दे हैव द पावर। उनको कोई कल पूछेगा नहीं, अफसपा है, वो मार देंगे ऐसे ही, और उनको कोई कल को कोई चार्ज नहीं करेगा। मतलब पहले इंडिया माने तो ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। वो बोल रहे हैं इट्स एन इंटेग्रल पार्ट, क्या है वो है इंटेग्रल पार्ट, उनको मानना मतलब नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ डिस्प्यूट। ये कोई एंगर नहीं है जो आउटबर्स्ट, मतलब एक दम से आ गया ऊपर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब ये तो चलता आ रहा है, बस अब एक जगह क्या हो गया ऐसा, ये ऑब्वियस था, ऐसा होना है आज या कल, ऐसा होना था, सो वो हो गया।
माफ कीजिएगा, जिस युवती से बात की थी हमने उनका नाम सनम मट्टू नहीं सना मट्टू था। और अब बात फ्रांस की। लगभग दो हफ्ते पहले फ्रांस के नीस में हुए हमले में जांच जारी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि लॉरी के ड्राइवर को दूसरे लोगों की मदद भी हासिल थी। हालांकि हमलावर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। हरिता कांडपाल सुना रही है बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार।
फ्रांस की नीस में बास्टिल डे पर ट्रक से हमला करने वाले मोहम्मद लुवेज बोलल के साथ हमले की योजना बनाने में और लोग भी शामिल थे। नीस में 14 जुलाई की रात बास्टिल डे पर प्रोमेनेड दे एंग्लेस पर आतिशबाजी का लुत्फ उठा रहे लोगों पर बुहलल ने एक बड़ा सफेद ट्रक दौड़ा दिया था, जिससे 84 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस की गोलियों से बुहलल की भी मौत हो गई थी। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक इस हमले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए 5 लोगों ने बुहलल की मदद की थी। पेरिस के प्रोसिक्यूटर फ्रांसवा मोला का कहना है कि इस हमले की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी।
Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont en fait cessé d'avancer.
फ्रांसवा मोला ने कहा, 14 जुलाई की रात से ही जांच जारी है। जांच में ये साफ है कि वो न सिर्फ पहले से इस हमले की योजना बना रहा था, बल्कि मोहम्मद लुवेज बुहलल को हमले की तैयारी और हमला करने में लोगों की मदद और साथ मिला था। نیس کے ہی رہنے والے 31 سال کے بوہلل کا تعلق فرانس اور ٹیونیشیا سے تھا، اور جن 5 لوگوں کو فرانس کی پولیس نے حراست میں لیا ہے ان میں آلبینیائی مول کے ایک دمپتی بھی شامل ہیں۔ ان پر لوویز بوہلل کو پستول دینے کا سندیہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کتھت طور پر بوہلل کو حملے کی رات ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا جس میں ہتھیاروں کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ سماچار ایجنسی اے ایف پی کے مطابق پولیس نے ایک شخص کے گھر سے کلاشنیکوف رائفل اور گولہ بارود برامد کیے ہیں، اور ایک سندگدھ نے حملے کے اگلے دن نیس میں حملے کی جگہ کا ویڈیو بھی بنایا تھا۔ حراست میں لیے گئے 5 سندگدھوں پر چرم پنتھ کے آروپ لگائے گئے ہیں۔ چرم پنتھی سنگٹھن اسلامک اسٹیٹ نے اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا تھا کہ اسی کے ایک سپاہی نے اس حملے کو انجام دیا ہے، لیکن فرانس کی پولیس کو بوہلل یا پھر حراست میں لیے گئے کسی بھی ویکتی کے بارے میں پہلے سے جانکاری نہیں تھی۔ پیرس میں پچھلے سال چرم پنتھی حملوں کے بعد فرانس میں آپات کا لاگو کیا گیا تھا، جسے اس حملے کے بعد اگلے سال جنوری تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔
کشمیر، گجرات اور نیس کے بعد اب بات اخبار کی، بتائیے ہریتا کھنڈپال اخبار کیا کہہ رہا ہے؟
جی فیصل، آج دلتوں کا مدعا سب سے پرمکھ طور پر چھایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو کیندریہ گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے جو چیتاونی دی ہے وہ، اور اس کے علاوہ مایاوتی کو لے کر جو لکھنؤ میں ہنگامہ ہوا، یہ ساری خبریں اخباروں میں چھائی ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ دلتوں کا غصہ ٹائم بم کے جیسا ہے، اور وپکش نے سرکار کو چیتایا کہ گورکشکوں پر لگام کسی جائے۔ وہیں اخبار نے گجرات میں دلتوں کی پٹائی کے ورودھ میں آتم ہتیا کی کوشش کرنے والے 6 لوگوں سے بات کی ہے۔ اخبار کے مطابق ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دلتوں کی دردشا کی طرف اور کس طرح ہم اپنی آواز اٹھا سکتے تھے،
کیوں تو اپنی آواز اٹھانے کے لیے وہ اس طرح کی قدم اٹھا رہے ہیں۔
جی، انڈین ایکسپریس نے یہ بھی ایک خبر چھاپی ہے کہ گجرات سرکار کے پردھان سچیو نے مانا ہے کہ گو رکشک دلوں کے نام پر راجیہ میں گنڈا گردی چل رہی ہے۔ جی آر الوریا نے کہا ہے کہ سو گھوشت گو رکشک دلوں کے نام پر راجیہ میں گنڈا گردی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو 11 جولائی میں کے دن جو پٹائی کی گئی تھی دلتوں کی، اس کا جو ویڈیو بنایا گیا تھا وہ مزے کے لیے بنایا گیا تھا اور بہادری دکھانے کے لیے اپلوڈ کیا گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی مدد سے دلتوں کی آواز اٹھانے میں،
لیکن اب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آخر اس پر وہ کر کیا رہے ہیں۔
جی، ٹائمز آف انڈیا اخبار نے بہوجن سماج پارٹی کی ادھیکش مایاوتی کے لیے اپشبد کے معاملے میں لکھا ہے کہ بسپا نے لکھنؤ کو جام کیا اور پارٹی آگامی ودھان سبھا چناؤ کے لیے بگل پھونکنے کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے۔ اور آپ سنتے ہیں کھیل سماچار۔ ہمارے ساتھ بھارت اور ویسٹ انڈیز میچ کے پہلے دن کا حل بتانے کے لیے آدیش کمار گپت ہیں۔ آدیش جی، بتائیے کہ کیا رہا میچ؟
جی دیکھیے، پہلا دن بھارت کے لیے بہت ہی اچھا رہا۔ جب پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ شاید ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھارت پر کچھ دباؤ بنانے میں کامیاب ہوگی، لیکن جب کل کا کھیل سماپت ہوا تب بھارت نے 4 وکٹ کھو کر 302 رن بنا لیے تھے۔ کپتان وراٹ کوہلی کے بلے سے شاندار شتک نکلا، وہ 143 رن بنا کر ناباد ہے۔ ان کا ساتھ دے رہے آر اشوین 22 رن بنا کر۔ حالانکہ بھارت کی شروعات کوئی بہت اچھی نہیں ہوئی تھی جب مرلی وجے کیول 7 رن بنا کر اور چیتیشور پجارا 16 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد شکھر دھون نے 147 گیندوں پر دھیرے پورن 84 رنوں کی پاری کھیلی، بہت ہی شاندار اننگ۔ اور اس کے بعد اجنکیہ رہانے نے 22 رن بنائے تھے۔ اگر ویسٹ انڈیز کی گیند بازی کی بات کی جائے تو دیویندر وشو نے 27 اوور میں 108 رن دے کر 3 وکٹ لیے، اور شیرن گیبریل نے 13 اوور میں 4 اوور ان کے بیٹنگ سے 43 رن دے کر 1 وکٹ لیا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے وکٹ پر اس بھارتیہ ٹیم کو کوئی وشیش پریشانی نہیں آنے والی ہے، اور بہت ہی مضبوط استھتی میں بھارت پہلے ہی دن پہنچ گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ آدیش کمار گپت اس پوری جانکاری کے لیے۔ اور اب سنتے ہیں ایک بار پھر سے وشو سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ دلتوں کے مدعے پر دلی، لکھنؤ اور گجرات میں سرگرمی بنی ہوئی ہے۔ گجرات میں دلتوں کی پٹائی کا مدعا کل سنسد میں گونجا کانگریس اپادھیاکش راہل گاندھی کے بعد۔ دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال آج گجرات کا دورہ کریں گے۔ کیرل پولیس نے وواد مسلم اپدیشک ذاکر نائک کی سنستھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے جڑے ایک یوک کو گرفتار کیا ہے۔ اس کا نام ارشد قریشی بتایا جا رہا ہے۔ برازیل کی سنگھیہ پولیس نے اگلے مہینے سے شروع ہو رہے ریو اولمپکس میں संभावित चरमपंथी हमले की तैयारी कर रहे 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ब्राजील के नागरिक हैं। फ्रांस के नीस में बास्टिल डे पर ट्रक से हमला करने वाले मोहम्मद लुवेस बुहलल को हिरासत में लिए गए 5 लोगों से मदद मिली थी। फ्रांस के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो और दूसरी तकनीकी मदद की थी राजेश चौहान ने। एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर से मुलाकात होगी। तब तक चाय की चुस्कियां लें और देखते रहें bbchindi.com।